ज्ञानवान को कर्म उपासना कर्तव्य है, जाकु समुच्चयवाद कहे हैं। समुच्चयवाद मैंने सारे करो, कर्म भी करो, उपासना भी करो, ज्ञान की प्राप्ति का साधन भी करो, उन्होंने कहते समुच्चयवाद। ठीक है ना, अब इसका खंडन करेंगे। कर्म उपासना से ज्ञान का विरोध है, देख लो, मतलब कर्म और उपासना से ज्ञान का विरोध है, सहायक नहीं हो। हाँ हाँ ठीक है, वही है वही है, कर्म उपासना से ज्ञान का विरोध है। वो कह रहा है पहले उन्हें की क्या है, पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म उपासना ज्ञान के साधक है, सहायक है, ये कह रहे नहीं नहीं कर्म उपासना ज्ञान के विरोधी है, सहायक नहीं है। हुण एक ग्रंथकार बोल रहा है, पहले पूर्व पक्ष शंकावादी बोल रहा है, ठीक है ना। देखो सिद्धांती सो समीचनी नहीं, काहे ते देह से भिन्न जो आत्मा नहीं जाने, जिड़ा देह से भिन्न आत्मा नहीं जानता, ता से कर्म होवे नहीं। कैसे करेगा, जे देह से बिना आत्मा नहीं मनोगे तो ये तो शरीर से नष्ट हो गया, तो सर्ग नर कौन जाऊगा, फिर की करना, कर्म करके दान पुण्य करके फिर की करोगे, है ना। सो समीचनी काहे ते देह से भिन्न जो आत्मा नहीं जाने, तासे कर्म होवे नहीं। काहे ते, क्यों, जन्मांतर के भोग के निमित्त कर्म करे हैं, कि चलो इस जन्म च नहीं अगले जन्म च सुख मिलेगा, इस वास्ते कर्म कर रहे दान पुण्य, भाई इसे वास्ते कर रहे जे ना, भी चलो अगले जन्म च सानू इहदा फल मिलेगा, ते जदों देह तो भिन्न आत्मा समझोगे तां ही ते अगला जन्म होगा। जे यही देह तू आत्मा समझोगे, ये तो इत्थे मर के खप गया, खत्म हो गया, तो फिर कर्म की करन दा फायदा होया ना, दान करन दा को फायदा होया ना, पुन करन दा ना, जप करन दा ना, पाठ करन दा। देह से भिन्न आत्मा नू मनोगे तो फिर ठीक है, ठीक है ना, वो भी कैसे मनोगे। देखो सो समीचनी काहे ते देह से भिन्न जो आत्मा नहीं जाने, ता से कर्म होवे नहीं। काहे ते जन्मांतर के भोग के निमित्त कर्म करे हैं, और देह का अग्नि विषय दाह हुए है, ता से जन्मांतर का भोग बने नहीं। अंदर जे देह नु आत्मा मनोगे, देह ते इत्थे भस्मी भूत हो गया, ते फिर जेडे तुहाडे पुन कर्म है वह किथे गए, ओदे नाल ही खत्म हो गए, ते की फायदा होया पुन कर्म करन दा, कर्म उपासना करन दा की फायदा होया। जदों देह तो भिन्न आत्मा नु मनोगे तां ही गल बनेगी, ते देह से भिन्न भी कैसे मनोगे, जन्म से रहित मरण से रहित तां ही, ठीक है ना। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का हेतु है। देखो शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान, जे तुसी शरीर तो भिन्न आत्मा नु मनोगे, ये तो जिहड़ा साधारण पुरुष उन्हें भी पूछ लोगे तो भी दस देगा, थोड़ा मोटा संस्कार होए वो कहेगा अरे क्यों पाप करता है, नरकां क्यों जाना तू, इदा नहीं कहेगा, लैने देने तो देने ही पैने आ, कानू इदा करदा, मतलब लैने देने देने किदा पैने आ, इत्थे नहीं तो उत्थे जाके देने पैणगे। तो फिर मतलब ये शरीर तो अलग आत्मा नु मनिया कि नहीं अपने आप नु, तां ही ते कर्म होया। तो जे तो ये शरीर नु आत्मा मन लोगे तो फिर तो कर्म नहीं कर सकते, क्यों, फिर तो जिदा वो प्रत्यक्षवादी है ना, नहीं है तो कोई गल नहीं, लुट के खा लो अपना का, खोलो किसी को, आपां सुखी रहना चाहुंदे, शरीर नु सुख रखो, यही आत्मा है। फिर तो विलोचन का सिद्धांत आ गया ना, ठीक है ना। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का हेतु है, सो शरीर से भिन्न भी आत्मा का कर्ता भोगता रूप करके सुखी रहना चाहुंदे, शरीर नु सुख रखो, यही आत्मा है। फिर तो विलोचन का सिद्धांत आ गया ना, ठीक है ना, फिर तो विलोचन का सिद्धांत आ गया ना, ठीक है ना। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान कर्म का हेतु है, सो शरीर से भिन्न भी आत्मा का कर्ता भोगता रूप करके ज्ञान कर्म का हेतु है। शरीर से भिन्न भी मनोगे तो कर्ता भोगता आत्मा नु मनना पवेगा, क्यों, कर्म करेगा तो फिर उदा फल भी भोगेगा स्वर्ग आदि, ताहे ते कर्म कर रहा स्वर्ग वास्ते, ते जे कर्ता भोगता नहीं मनोगे फिर स्वर्ग नरक कौन सहेगा, ठीक है ना। शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान भी कर्म का हेतु है, सो शरीर से भिन्न भी आत्मा का कर्ता भोगता रूप करके ज्ञान कर्म का हेतु है। मैं पुण्य पाप का कर्ता हूँ और पुण्य पाप का फल मेरे को होवेगा, ऐसा जागु ज्ञान है सो कर्म करे है। लो जी निचोड़ दस दिता जाने सार तत्त जिन्हों कह रहे हैं, मैं करता भोगता हूँ, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ। ऐसा जिनको जिसको ज्ञान होवेगा ना वही कर्म करेगा, क्यों? मैं करने वाला हूँ, मैं पुण्य कर्म कर रहा हूँ, इहदा मैनूं फल मिलेगा। जिहदे मन च यह है वह कर्म करेगा, जिहदे मन च यह नहीं है वह ज्ञान वल लगेगा, फिर उन्हें की लेना कर्म तो। ठीक है, सो कर्म करे हैं और ज्ञानवान को ऐसा आत्मा का ज्ञान है नहीं, किंतु पुण्य पाप और सुख दुख से रहित असंग ब्रह्म रूप आत्मा है। उन्हें तो ऐसा ज्ञान है ज्ञानवान को, जेड़ा ज्ञानी है उन्हें कैसा ज्ञान है? पुण्य पाप और सुख दुख से रहित और असंग ब्रह्म रूप आत्मा है। ऐसा वेदांत वाक्य से ज्ञान होवे है, सो ज्ञान कर्म का हेतु नहीं उल्टा विरोधी है। जाते ज्ञानवान से कर्म होवे नहीं, ज्ञानवान की कर्म करेगा? कर्म तो वो करेगा जिन्हों अपने आप नू ब्रह्म समझ रहा, वो की करेगा कर्म? जेड़ा अपने आप नू शरीर तो अलग समझ रहा आत्मा वो करेगा। करता कर्म, करता कर्म का फल वेद भेद ज्ञान कर्म का हेतु है। देखो करता कर्म और फल इतना तो ज्ञान हो, मैं करता हूँ ये, मैं कर्म कर रहा हूँ इहदा ये कर्म का मैनू ये फल मिलेगा, तीन हो गए ना, करता कर्म फल, करता कर्म और फल, ये तीन ज्ञान होंगे ता ही कर्म होगा। मैं करता हूँ अपने आप नू करता मनोगे, फिर ये कर्म मैं करूँगा इहदा मैनू ये फल मिलेगा। ठीक है, कर्ता कर्म और फल का भेद ज्ञान कर्म का हेतु है। भेद ज्ञान, मैं अलग हूं कर्म अलग है फल अलग है, है? मैं अलग हूं कर्म अलग है फल अलग है, ता ही होगा ना। सो कर्ता कर्म फल की ज्ञानवान को आत्मा से भिन्न प्रतीति होवे नहीं, सब कुछ आत्मा रूप प्रतीत हो रहा ज्ञानवान को। ठीक है, संपूर्ण आत्मा स्वरूप ही प्रतीत होवे है, जाते भी ज्ञानवान से कर्म होवे नहीं। और भाष्यकार ने बहुत प्रकार से ज्ञानवान को कर्म का अभाव प्रतिपादन किया है। कर्म का और ज्ञान का फल से विरोध है, जाते भी ज्ञानवान का समुच्चय बने नहीं। भाष्यकार मैंने भगवान शंकराचार्य जी होए आ, उन्होंने भी जो ब्रह्म सूत्र से टीका किया ना उस दसिया विरोध किया भी कर्म जड़ा है वो ज्ञान का साधन नहीं, ज्ञान का विरोधी है। क्यों? मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत चित आनंद हूँ, आत्मा हूँ, ये छड़ करके फिर ही कर्म करोगे मैं फलाना हूँ तो ता ही कर्म करोगे? वो तो जरा ज्ञान वाले तो पहले छड़ता ज्ञान का साधन, आगे कितने नीचे आ गए, बीए की क्लास तो कितने आ गए पांचवीं इनू कहते रूढ़ पद्धति, उपर चढ़ के थले डिग जाना। चलो, कर्म का फल अनित्य यही है ना, कर्म का फल की है? कर्म करोगे तो फल की मिलेगा, संसार ही मिलेगा। जितने राजा बन भी राजा बनोगे तो की बनोगे, संसार से आगे बनोगे, मतलब संसार मने स्वर्ग नरक सब पताल सारे बिच आ गए भाई, खाली ये पृथ्वी लोग मृत लोग नु संसार नहीं समझ लेना। स्वर्ग का राजा बनोगे तो भी तो अनित्य है, परले काल में किसे स्वर्ग रहेगा तो भी अनित्य हो गया, इच्छे दा राजा बनोगे तो भी अनित्य हो गया। यही कह रहे हो, कर्म का फल अनित्य संसार है और ज्ञान का फल नित्य मोक्ष है। कितना विरोध होता, बिल्कुल दिन रात का फर्क नहीं हो गया। आत्मा में जाति आश्रम अवस्था का अध्यास कर्म का हेतु है। देख लो अंदा कर्म तुसी क्यों कर रहे जे, ताड़े को केड़ी शक्ति जड़ी कर्म करा रही, जबरदस्ती अनिच्छा भी, अनिच्छा मैंने ना इच्छा होंदी हो भी, ना इच्छा नहीं है पर फिर भी जबरदस्ती कर्म करवा रही हो, केड़ी शक्ति है वो देख लो, ए शक्ति जी केड़ी? आत्मा में जाति, मेरी ये जाति है, आश्रम मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, संन्यास आश्रम में हूँ, केड़े ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ या वानप्रस्थ में हूँ, केड़े में हूँ, अवस्था मेरी उम्र कितनी है, है ना? ये अध्यास का हेतु कर्म है, ये जड़ी भ्रांति होएगी ता ही कर्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, काहे ते जाति आश्रम अवस्था के योग भिन्न भिन्न कर्म हैं, जाते जाति आदि का अध्यास कर्म का हेतु है। ठीक है ना, ब्राह्मण होगा तो वो छे कर्म दसे शास्त्र ने, ब्राह्मण होवे ब्राह्मण जाति दा होवे तो छे कर्म कर सकदा है, सातवां कर्म ओदे वास्ते लिखिया ही नहीं शास्त्र ने। अगर शास्त्र दे हिसाब जीना चाहेगा ब्राह्मण तो ओदे छे कर्म है, केड़ा केड़ा छे कर्म है, छे कर्म केड़े आ, पढ़ना पढ़ाउना, जग करना और करवाउना, दान लेना देना, ये छे कर्म है ओदे बस। ते की करोगे दसो, पहला वो समझेगा मैं ब्राह्मण हूँ ताई ते पढ़ेगा पढ़ाएगा, पहला ब्राह्मण समझेगा अपने आप ताई दान लेगा देगा, ते की आ गया जाति दा अध्यास हो गया ना आत्मा च, मैं ब्राह्मण हूँ है की है कुछ भी नहीं, वही तो बात है ना। ते शरीर तो आप पहला हटना चाह रहे हैं, हाँ अगर ये शरीर मान लो कबीर जी का शरीर कौन सी, ना जलाया नहीं, जलाया ने पालिया सी, जलाया ने जलाया दा उठा करके बच्चे नू तालाब दे किनारे से उन्होंने ओदा पालन पोषण किया सी, परवरिश की सी ओदी, तो जलाए हो गए तो माता पिता कौन से, तो फिर की हो गया, ये शरीर जेड़े घर विच भी जाएगा ओही जाती हो जाएगी। हाँ हुण तो स्त्रियों की हिसाब लगाओ तुसी, स्त्रियों की जाति केड़ी है, गोत्र गोत, पिता के घर कुछ होएगी जे दिन जो शादी होगी वो गोत्र फिर वो लग जाएगी, तो फिर कि गोत्र का अनितो ही कि नितो ही, यही यही आत्मा का है, ये शरीर का जाति का आश्रम का। आप हम तुम गृहस्थ आश्रम जे तुम संन्यास ले लिया तो संन्यास आश्रम च आ गए, आश्रम भी अनित हो गए, बदल गया ना एक मिनट से, कितना टाइम लगा, जे नित होंगे तो क्यों बदलता, इसलिए ये जाति आश्रम अवस्था अवस्था भी एक रहने वाली है, पहला बचपन सी फिर जवानी हो गई, बदल गया ना एक मिनट से, कितना टाइम लगा, जे नित होंगे तो क्यों बदलता, इसलिए ये जाति आश्रम अवस्था अवस्था भी एक रहने वाली है, पहला बचपन सी फिर जवानी, हूँ देखो ये भी बदल रही है। ठीक है, यद्यपि जाति आश्रम अवस्था देह के धर्म है, हाँ देख लो की कह रहे हैं, कह रहे हैं यद्यपि जाति आश्रम अवस्था, जाति मैंने जाति और आश्रम मैंने चार आश्रम, गृहस्थ आश्रम बानप्रस्थ गृहस्थ ब्रह्मचारी बानप्रस्थ और संन्यास, ये चार आश्रम और अवस्था वृद्ध अवस्था बचपन अवस्था बाल अवस्था ऐसे जवान ये अवस्था, ये कहते हैं ये देह के धर्म है, ये आत्मा दे नीचे है, ये शरीर दे धर्म है, देह मैंने शरीर दे, हाँ और कि कर्मी को देह से आत्मबुद्धि है नहीं, ठीक है, कर्म जेड़ा कर्मी है कर्म करने वाला उन्हें देह में आत्मा बुद्धि नहीं है, किंतु देह से भिन्न करता आत्मा कर्मी जाने हैं, वो देह से भिन्न जान रहा है आत्मा नु, वो भी देह से भिन्न करता, जह वार्ता पूर्व कही जाते जाति आश्रम अवस्था की प्राप्ति आत्मा में कर्मी को भी बने नहीं, तथापि देह से भिन्न आत्मा का कर्मी को मैंने कर्म करने वाला कर्मी को अपरोक्ष ज्ञान नहीं, किंतु शास्त्र से परोक्ष ज्ञान है और देह में आत्मज्ञान अपरोक्ष है, जो देह से भिन्न आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होवे तो देह से अपरोक्ष आत्मज्ञान का विरोधी होवे है और अपरोक्ष और परोक्ष ज्ञान का परोक्ष ज्ञान से विरोध है नहीं, जाते देह से भिन्न करता आत्मा का ज्ञान और देह में आत्म बुद्धि दोनों एक को बने नहीं है जी, बने हैं केड़ा, जाते देह से भिन्न करता आत्मा का ज्ञान और देह में आत्म बुद्धि दोनों एक बने हैं। ठीक है, दृष्टांत दासे अगे दृष्टांत दे रहा, मूर्ति में ईश्वर ज्ञान शास्त्र से परोक्ष है, मूर्ति है भगवान की तो वो शास्त्र की कह रहा है ये ईश्वर है, ठीक है ना, तो एक है कि वो परोक्ष है, परोक्ष ज्ञान है, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਛਾਣ ਬੁੱਧੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਮੈਨੇ ਪੱਥਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬਈ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੋ ਦਿਖਾਈ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਰੋਕਸ਼, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੋਕਸ਼। ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੀ ਰਹੇ ਪੱਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂਰਤੀ ਮੇਂ ਈਸ਼ਵਰ ਰੂਪ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੇ ਪਰੋਕਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਪਛਾਣ ਬੁੱਧੀ, ਪਛਾਣ ਮੈਨੇ ਪੱਥਰ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨਕਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਕਿੰਤੂ ਦੋਨੋਂ ਏਕੂ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਏਕੂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਏਕੂ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਜੂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਜੂ ਮੈਂ ਜਾਂਕੂ ਸਰਪ ਸੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਸਰਭਰਾਂਤੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਹ ਨਿਜਮ ਸਿੱਧ ਹੁਆ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰੋਕਸ਼ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਪਰੋਕਸ਼ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੋਕਸ਼ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਉਹਦਾ ਪਰੋਕਸ਼ ਸੇ ਨਾਸ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਚੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰੋਕਸ਼ ਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਤੇ ਦੇਹ ਸੇ ਭਿੰਨ ਆਤਮਾ ਕਾ ਪਰੋਕਸ਼ ਔਰ ਦੇਹ ਸੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਬਣੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮ ਕੇ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੇ ਭਿੰਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਗਿਆਨ ਕਰਮ ਕਾ ਹੇਤੂ ਹੈ, ਸੋ ਕਰਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਗਿਆਨ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੋ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਭੀ, ਕਾਫੀ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਦੇਹ ਸੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ ਤਬ ਦੇਹ ਕੇ ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਦੇਹ ਮੈਂ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਆਤਮ ਬੁੱਧੀ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਕੇ ਅਭਾਵ ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਕਰਮ ਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਪਾਸਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਪਾਸਕ ਹੂੰ, ਦੇਵ ਉਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀ ਸੇ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਵੇਦ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਪਾਸ ਹੂੰ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਇਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ, ਦਵੈਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੈ ਸੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋ ਉਪਾਸ ਉਪਾਸਕ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਸੰਗਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਔਰ ਦੇਹ ਕਾ ਸੁਪਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਕਲਪਿਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਹੈ, ਔਰ ਚੇਤਨ ਏਕ ਹੈ ਜਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਉਪਾਸਨਾ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਕਸ਼ੀ ਕੇ ਗਮਨ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਤੇ, ਪਕਸ਼ੀ ਕੇ ਦੋ ਪਕਸ਼ ਏਕ ਕਾਲ ਮੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਕਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਔਰ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਏਕ ਕਾਲ ਮੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਮੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀ ਅਪੇਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਤੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਤੇ, ਸੇਤੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਲ ਕਾ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਲ ਕਾ ਹੇਤੂ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਲ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼, ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹਾਂ ਸੇਤੂ ਪ੍ਰਤਿਕਸ਼ ਫਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਤੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਕਾਹੇ ਤੇ, ਸੇਤੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਲ ਕਾ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਫਲ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਬਣੇਗੀ ਉਸੇ, उससे प्रारब्ध बन के जब दान करोगे, हाँ, और दूसरे अगले जन्म मिलेगा। प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होवे सो दृष्ट फल कही है, देखो खोल रहा हो, जड़ा प्रत्यक्ष फल प्रतीत होवे उनका आगे दृष्ट, जैसे भोजन का फल तृप्त तृप्ति प्रत्यक्ष है, भोजन कर लिया तो पता चल गया पेट भर गया और फल तो तृप्त हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। जहाँ ते भोजन दृष्ट फल का हेतु है, तैसे सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष फल प्रतीत होवे नहीं, किंतु पाप का नाश रूप फल शास्त्र में जानिया जावे है। सो शास्त्र से फल जान के और प्रत्यक्ष प्रतीत होवे नहीं, सो अदृष्ट फल कही है। जड़ा शास्त्र से सुनिया है, जानिया है, वो कर्म आपा कीता तो हो गया अदृष्ट फल। जाते जैसे यज्ञ आदि कर्म स्वर्ग आदि का अदृष्ट फल के हेतु है, तैसे सेतु का दर्शन भी पाप के नाश रूप अदृष्ट फल का हेतु है। और अदृष्ट फल का हेतु होवे है सो तो जितना फल की उत्पत्ति में शास्त्र ने सहाय बोधन किया है ता सहित फल का हेतु होवे, केवल नहीं जितनी ओदे निजम दसे है। ऐसे गुटका लेके बैठोगे पाठ करने ते फल नहीं मिलेगा, ओदे निजम दसे है, स्नान करके बैठो, शुद्ध कपड़े पहन के बैठो, इधर नु मुख करके बैठो, ऐसे लेके बैठ जो माला जप कर रहे हैं ध्यान च ते बैठ सकते जी। मानसिक कर्म करना होवे फिर तो स्नान की जरूरत नहीं है। अगर जप लैके माला लैके जप करनी है, गुटका लैके पाठ करना होवे तो फिर तो वे निजम लगनगे, स्नान करना पवेगा, शुद्ध कपड़े पहनने पैणगे, इधर नू पूर्व वल नू जां उत्तर वल नू मुख करके बैठना पवेगा। तो जे ये नहीं करोगे तो फिर की फल मिलेगा? चल पाठ ही करना की आ, मूंह दा की, इधर नू की तो इधर नू की, चल बाद च ना लांगे, नहीं भी वो जो निजम करनी पैणगी। केवल नहीं जाते सरदा निजम आदिक सहित सेतु का दर्शन पाप नाश रूप फल का हेतु है, सरदा निजम आदिक रहित हेतु नहीं। कहे थे सेतु के दर्शन से प्रत्यक्ष तो कोई फल प्रतीत होवे नहीं, केवल शास्त्र जान्या जावे है। सो शास्त्र सरदा आदिक सहित सेतु के दर्शन से फल बोधन करे हैं। केवल दर्शन से फल की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं, खाली दर्शन, वो तो मछली जड़े पकड़ रहे हो तो रोजी कर रहे हैं, जड़े उथे रह के मछली पकड़ रहे हैं समुद्र चो तो रोजी दर्शन कर रहे हैं, तो फिर तो उन्होंने रोजी फल मिले जा मिलना चाहिए आंदा नहीं। निजम जड़े हो सतगुरु सिख के बंधन तो कटेगा, पर वो निजम विच रवे ते ओदे विच भी निजम है, निजम होणगे तां ही तो बंधन कटेगा। और निजम उसने कोई रखिया नहीं तो क्यों बंधन कटेगा, वो तो पहनगे सगो। हाँ यही हाल है, सेतु के दर्शन का पाप तो नष्ट होगा, पर जेडे निजम दसे है विकार ते हटे वो लगने पैणगे, निजम लागू होणगे तां ही। जाते सेतु का दर्शन फल की उत्पत्ति में श्रद्धा निजम आदि की अपेक्षा करे हैं, और श्रद्धा नहीं है एवे जा चल की है उतो ये पत्थर ये भगवान थोड़ी है, तो जिन्हें मर्जी जल चढ़ाते रहो की होने वाला, कुछ नहीं होना, श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना। और ब्रह्म विद्या और अपने फल की उत्पत्ति में कर्म उपासना की अपेक्षा करे नहीं, ब्रह्म विद्या दे विच कर्म उपासना की जरूरत नहीं है। आपां कहेंगे अंताकरण शुद्ध सरवणना भी हो सकता, भाई जितनी जल्दी सरवणना अंताकरण शुद्ध होगा उतनी जल्दी कर्मना नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रख लेना। हाँ ब्रह्म विद्या अपने फल की उत्पत्ति में कर्म उपासना की अपेक्षा करे नहीं, कहे थे जो ब्रह्म विद्या का फल भी स्वर्ग आदि की न्यायी लोक विशेष अदृष्ट होवे, सो लोक विशेष भी केवल ब्रह्म विद्या से शास्त्र से बोधन नहीं किया होवे, किंतु कर्म उपासना सहित से बोधन किया होवे, तो ब्रह्म विद्या भी सेतु के दर्शन की न्यायी फल की उत्पत्ति में कर्म उपासना की अपेक्षा करे। वो कह रहे जे एदा निजम हुंदा ना कि ब्रह्म विद्या तां प्राप्त होगी, ब्रह्म ज्ञान तां होगा जो कर्म उपासना करो, ते जे ऐसा निजम हुंदा तो फिर तो तुहानू करनी पैणी सी, पर ऐसा निजम नहीं है। वो की कह रहे हो गए ब्रह्म विद्या ज्ञान की उत्पत्ति का साधन है पर कर्म उपासना सहायक नहीं अंतःकरण शुद्धि के सहायक है ठीक है ना। कर्म उपासना की अपेक्षा करे नहीं सो ब्रह्म विद्या का फल मोक्ष स्वर्ग की न्याय लोक विशेष अदृष्ट तो है नहीं। मोक्ष मोक्ष का यह थोड़ी आ स्वर्ग जागे तो जा वैकुंठ जागे तुम मुक्ति मिल जाएगी वो तो इतने भी मिल सकती है जिंदे जी भी जहां तक किसी लोक जाके मिलनी हो तो फिर दूसरी गल वो तो इतने मिल जाएगी। हाँ जे तो लोक जाके मिलनी हो मरने के बाद फिर तो होगी अदृष्ट वो तो प्रत्यक्ष फल में उसी समय मिल रहा है एक हथ दो एक हथ लो किंतु मोक्ष नित्य प्राप्त है और भ्रांति से बंद प्रतीत होवे है। मुक्ति तो नित्य प्राप्ति है तो प्यागी है भुलेखा ही जहां तक प्राप्त ना होवे विकुंठ में जाके सानू मुक्ति मिलेगी उत्थे जाके प्राप्ति वो नहीं आंदा इत्थे भी तुहानू प्राप्त है तो फिर क्यों नहीं प्रतीत हो रहा उहदा भुलेखा पिया तुहानू जिहड़ा भ्रांति हो गई है। भ्रांति की निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या का फल है वो जिहड़ी भ्रांति की निवृत्ति है ना ओही ब्रह्म विद्या का फल है और कुछ नहीं भ्रांति चकनी है ठीक है। सो भ्रांति की निवृत्ति केवल ब्रह्म विद्या से हमारे को प्रत्यक्ष है और रज्जु ज्ञान से सर्व भ्रांति की निवृत्ति सर्व को प्रत्यक्ष है। देख लो उन्हें की कह रहा है हमारे को मतलब जानते अधिष्ठान ज्ञान का भ्रांति की निवृत्ति दृष्ट फल है अदृष्ट नहीं दृष्ट तत्काल उसी समय दृष्ट की उत्पत्ति जितनी सामग्री से प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है सो सामग्री दृष्ट फल का हेतु कही है। जैसे तुरी तंतु वेम से पट की उत्पत्ति प्रत्यक्ष है जानते तुरी तंतु वेम पट के हेतु है ठीक है। केवल भोजन से तृप्ति फल प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है जानते केवल भोजन तृप्ति का हेतु है। तैसे केवल अधिष्ठान ज्ञान ते भ्रांति की निवृत्ति प्रत्यक्ष प्रतीत होवे है जानते केवल अधिष्ठान का ज्ञान ही भ्रांति की निवृत्ति का हेतु है। जैसे रज्जु का ज्ञान भ्रांति की निवृत्ति में अन्य की अपेक्षा करे नहीं भी सर्प जड़ा रज्जु च सर्प प्रतीत हो रहा है तो वो वास्ते तेन कड़ा कर्म करना पवेगा उपासना करनी पवेगी तो फिर रज्जु का ज्ञान होगा कोई कर्म उपासना करना पड़ेगी कि पहला तुसी कर्म करो फिर उपासना करो और फिर रज्जू का ज्ञान होगा कहता नहीं नहीं रज्जू का ज्ञान ऐसे हो जाएगा रज्जू के उन ठीक से देखने दे नाल ठीक है। तैसे बंध की भ्रांति का अधिष्ठान जो नित्य मुक्त आत्मा ताका ज्ञान भी बंध भ्रांति की निवृत्ति में करुण उपासना की अपेक्षा करे नहीं और ज्ञान के फल मोक्ष को जो स्वर्ग की न्याय लोक विशेष अदृष्ट अंगीकार करे हैं सो वेद वाक्य से विरुद्ध है। मंदा जड़ा बंद की निवृत्ति तुसी मनोगे भी किसी दूसरे देश विच जाके मुक्ति होगी स्वर्ग आदि विच विकुंठ आंदा वो वेद दे विरुद्ध है वो तो इत्थे भी हो जाएगी। काहे ते ज्ञानवान के प्राण किसी लोक को गमन करे नहीं देख लो है? प्रधान जी काहे ते ज्ञानवान के प्राण किसी लोक को गमन नहीं करते जह वेद में कहया है तो फिर केड़े तो लोक जाएगा तो क्यों नहीं करते गमन भाई जे गमन नहीं करते तो फिर मुक्त कैसे होगा। वो कह रहे ब्रह्म कैसा है सर्वत्र व्यापक तो जिथे ओदा शरीर पूरा है उथे ब्रह्म नहीं है उथे लीन हो जाएगा पंचभूत जड़े पंचभूतों में लीन हो जाएंगे तो वह आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म में लीन हो जाएगा। घड़ा जड़ा घड़ा बनया घड़े नू डंडा मारिया घड़ा टुट गया आकाश कितने गया उथे लीन हो गया पहले उस शुद्ध तो पहले ही सी आकाश पहले ही सी तो आकाश के लीन हो गया तो यही हाल ओदा। लोक विशेष अंगीकार करने ते स्वर्ग की न्याय मोक्ष अनित होवेगा जानते लोक विशेष रूप मोक्ष नहीं और लोक विशेष जो मोक्ष अंगीकार करें ताकू भी केवल ज्ञान से ही मोक्ष लोक की प्राप्ति अंगीकार करनी योग्य है। काहे ते जो शास्त्र ने प्रतिपादन किया अर्थ होवे सो शास्त्र के अनुसार ही अंगीकार किए हैं। सो शास्त्र केवल ज्ञान से मोक्ष कहे हैं, जाते केवल ज्ञान मोक्ष का हेतु है। कर्म उपासना ज्ञान तीन नहीं, केवल ज्ञान बस। हाँ जी, जब पहले उन्हें प्रशंका की थी ना, वो तो उत्तर दे रहा बस करें। चलो चलो चलो, अब वृक्ष का दृष्टांत दे रहा। हाँ, वृक्ष का दृष्टांत भी बने नहीं। कहे थे यद्यपि जल का सेचन वृक्ष की उत्पत्ति और रक्षा के हेतु है, तथापि वृक्ष के फल की उत्पत्ति में नहीं। अंदा वृक्ष की जड़ी फल है ना, वो नहीं पानी लगा रहा। जब वृक्ष नु पानी दे रहे जे, वो मान लो ओदी उत्पत्ति में ओदी रक्षा में सुक ना जावे, ये तो कम कर सकता है। पर फल लाउण दा पानी दा कम नहीं है। हुण इहनू भी पानी दे रहे हैं आपां, इहनू क्यों नहीं लग गया, ये कह रहे हो ठीक है। तथापि वृक्ष के फल की उत्पत्ति में नहीं। वृद्ध जो वृक्ष है ताके विषय जल का सेचन वृक्ष की रक्षा के निमित्त है। जो बुढ़े हो गए वृक्ष, उन्होंने तो फल लगना, जिन्ना मर्जी पानी दे जाओ, हाँ रक्षा होंगी रहेगी, फिर सुकन ना, बस और की होगा, ठीक है ना। फल के निमित्त नहीं। जल से पुष्ट जो वृक्ष सो फल का हेतु है, जल सेचन से नहीं। अंदर जल पी के जड़ा पृष्ठ हो पुष्ट हो गया है ना, वो तो फल देगा, खाली जो तुम जल दे दोगे उससे समय फल लग जाएंगे, ये नहीं हो सकता है ना। जैसे कर्म तैसे कर्म उपासना भी ज्ञान की उत्पत्ति में उपयोग है, मोक्ष में नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति का साधन तो है, मुक्ति का साधन नहीं है, अंतःकरण शुद्धि से है ना। जानते ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व ही अंतःकरण की शुद्धि और निश्चलता के निमित्त कर्म उपासना करे, ज्ञान से अनंतर मोक्ष के निमित्त नहीं। चलो।